તારીખ 4/9/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 510 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 501
510 હિન્દી મેં હિન્દી પ્રત મેં 418 પેજ નંબર
418
ગુજરાતી મેં 411 पत्र लिखा गया है खंभात के एक त्रिभुवन दास नाम के मुमुक्षु है उसके पर ये पत्र लिखा गया है और गृहस्थों को जिस प्रकार की क्षतियाँ होने से धर्म की प्राप्ति नहीं होती है वैसी परिस्थिति सामान्य रूप से मुमुक्षु गृहस्थ की होती है उस विषय में उपदेश दिया है कि आपको परिणाम कैसा होना चाहिए। इसलिए सामान्यतः सभी मुमुक्षुओं को ये बात लागू होती है यानी प्रयोजन होता है। श्री स्तंभ तीर्थ निवास स्थित शुभेच्छा संपन्न श्री त्रिभुवन दास के प्रति यथा योग्य पूर्वक विनती की। खंभात के जो त्रिभुवन दास है शुभेच्छा संपन्न है मतलब अपने आत्मकल्याण की भावना रखने वाले हैं ऐसे मुमुक्षु को ये पत्र लिखते हैं कि बंध वृत्तियों का उपशम करने के लिए और निवर्तन करने के लिए जीव को अभ्यास सतत अभ्यास कर्तव्य है। क्या कहा? बंध वृत्तियों जीव के जिस परिणाम वृत्ति से नए कर्म का बंधन हो कर्म बंधन हो जीव कर्म से बंधे ऐसी जो जीव की संसार के परिणाम की वृत्ति है उनको शांत करने के लिए यानी निरस करने के लिए उपशम मैंने निरस करने के लिए और निवृत्त मैंने उसको क्षय करने के लिए उसका नाश करने के लिए जीव को अभ्यास कर्तव्य है सतत अभ्यास कर्तव्य है। अभ्यास माने क्या? अभ्यास मैंने प्रैक्टिस बार बार प्रयत्न करना उसको कहते हैं अभ्यास। बार बार करने से अभ्यास नाम बोलते हैं। एक दफे हो गया वो बात नहीं। जीव को उल्टी प्रैक्टिस बहुत है अनादि से है और वो भी सतत है तो इसके लिए सुल्टी प्रैक्टिस भी सतत होना जरूरी है। उल्टे विचार हैं उसके सामने सुल्टे विचार चाहिए और उल्टा परिणमन है प्रैक्टिस है उसके सामने सुल्टा परिणमन और सुल्टी प्रैक्टिस चाहिए क्योंकि विचार के बिना और प्रयास के बिना उन वृत्तियों का उपशमन अथवा निवर्तन कैसे हो। विचार मैंने सही विचार के बिना आत्मकल्याण के हेतुभूत विचार के बिना और प्रयास के बिना और प्रयत्न के बिना प्रैक्टिस के बिना उन वृत्तियों का उपशमन अथवा निवर्तन कैसे हो। ऐसी जो बंद करने वाली वृत्ति हैं उनका निरसपना कैसे होगा या इसका अभाव कैसे होगा कि नहीं हो सकेगा इस विषय में सिद्धांत लेते हैं। परिणाम का ये सिद्धांत है के कारण के बिना किसी कार्य का होना संभव नहीं है। कोई भी कार्य हो, उसका कारण मिले बिना कार्य हो जाए, ऐसा कहीं देखा जाता नहीं है। जैसे बुखार आया, बुखार मिटाना जरूरी है, लेकिन किस कारण से आया? कारण के बिना कार्य को मिटाया जाता नहीं है, उसके कारण के गहराई में जाना पड़ेगा। कोई भी कार्य संपन्न करने के लिए कारण के गहराई में जाना पड़ता है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि कारण के बिना किसी कार्य का होना संभव नहीं है। तो फिर यदि इस जीव ने उन वृत्तियों के उपशमन अथवा निवर्तन का कोई उपाय न किया हो तो उनका अभाव नहीं होता, यह स्पष्ट संभव है। क्या कहा? कि उसी सिद्धांत अनुसार जीव ने उन वृंदवृत्तियों का उपशमन और निवर्तन करने का कोई कारण रूप उपाय नहीं किया तो फिर उसका उनका अभाव नहीं हो सके। वो बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उसका अभाव कैसे होगा। कुछ समझ में आए ऐसी बात है, कारण कार्य का लॉजिक है इसके पीछे। कारण कार्य का लॉजिक को हो समझने की दृष्टि है, और परिणमन के दृष्टि से देखो तो वो कारण कार्य का साइंस है, विज्ञान है, कि कारण के बिना कार्य होना संभव नहीं है। कई बार पूर्व काल में वृत्तियों के उपशमन तथा निवर्तन जीव ने कई बार पूर्व काल में वृत्तियों के उपशमन तथा निवर्तन का जीव ने अभिमान किया है, परंतु वैसा कोई साधन नहीं किया और अभी तक जीव उस प्रकार का कोई उपाय नहीं करता, अर्थात अभी उसे उस अभ्यास में कोई रस दिखाई नहीं देता तथा कटुता लगने पर भी उस कटुता की अवगणना कर पर यह जीव उपशम एवं निवर्तन में प्रवेश नहीं करता। यह बात इस दुष्ट परिणामी जीव के लिए वारंवार विचारणीय है, किसी प्रकार से विसर्जन करने योग्य नहीं है। क्या कहा? कई बार पूर्व काल में, भूतकाल में, भूतकाल के अनेक भवों में अनेक बार जीव ने इस वृत्तियों का उपशमन तथा निवर्तन का अभिमान किया है, उपशमन और निवर्तन नहीं किया है, न निरस किया है, न क्षय किया है, नाश किया है, किंतु इसका अभिमान किया है। कैसे? के त्याग कर दिया। कई बार क्या किया? त्याग कर दिया और मान लिया कि मेरे परिणाम मिट गए, ऐसा भ्रम हुआ है उनको, और त्याग से यह भ्रम होता है। धर्म के क्षेत्र में आकर के जीव कारण कार्य के कार्य का विज्ञान नहीं समझता तो बहुभाग क्या होता है कि उनको त्याग करने में आता है, या तो त्याग उसको कराया जाता है या स्वयं त्याग कर लेता है, दोनों प्रकार बनता है। कि आप त्याग कर दो तो आपके परिणाम मिट जाएंगे, वास्तव में ऐसा नहीं होता। जब तक अन्य पदार्थ में जीव के आधार बुद्धि है और सुख बुद्धि है, सुख का निश्चय किया हुआ है और ये हमारा आधार है ऐसा निश्चय किया हुआ है, वहां तक जीव चाहे जितना त्याग करें उनके परिणाम उस पदार्थ के प्रति मिटने वाले नहीं है। अंदर में आधार बुद्धि और सुख बुद्धि रह जाए और बाहर में कर दें त्याग, क्या होगा कि परिणाम का दमन हो जाएगा। क्या होगा? परिणाम का दमन होगा, दबे हुए परिणाम फिर आगे जाके उछल कूद करने लगेंगे और जोर से उछल कूद करने लगेंगे, ये बात होने वाली है। जैसे किसी रोग को दबाया जाता है, आते हैं ना कृत्रिम औषधियां आती है, कृत्रिम दवाइयां होती हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं, कितना है कि 104 डिग्री बुखार है, इंजेक्शन लगा दो, कितना हो गया 98 हो गया, फिर क्या हो गया कि फिर हो गया पैरालिसिस या कुछ ना कुछ दूसरा निकल गया, ये होता है ना पैर का वो हो जाता है, पोलिया, पोलिया होता है, पोलिया इसमें से होता है। कई लोगों को जो पोलिया का रोग होता है इसी कारण से होता है कि कृत्रिम दवाई से कोई रोग को दबाते हैं तो उसके असर हाथ पैर पर आ जाती है या दूसरा कोई गंभीर रोग धारण कर लेता है। जैसे शरीर के रोग को दबाना ठीक नहीं है, वैसे जीव का जो रोग है राग द्वेष मोह अज्ञान मिथ्यात्वादी, उस रोग को दबाना नहीं चाहिए, उसको सम्यक प्रकार से उपशमन करना चाहिए और उसका सम्यक प्रकार से अभाव निवर्तन या क्षय करना चाहिए। दबाने से काम होने वाला नहीं है, और खास करके आजकल कैंसर के इलाज में ऐसा ही होता है, ऑपरेशन कर देते हैं और जगह वो चालू हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। प्रैक्टिस नो साचो अभ्यास छे, ए परिणामों ने बराबर समझी ने नु साइंस उसका विज्ञान समझ कर उसका कारण कार्य का जो विज्ञान है उसको समझ कर उसके रूट कॉज में कारण में जाना चाहिए। कारण का अभाव होगा तो कार्य का अभाव हो ही जाएगा। जैसे एक दृष्टांत ले लें आपके प्रश्न के सामने कि जीव को राग होता है तो अच्छा लगता है कि चलो मिठाई खाई हमने, सुख लगा, क्या लगा? कोई भी वस्तु में कोई प्रसंग में जीव को सुख लगता है, लगता है कि नहीं लगता है? उस वक्त उसको राग होता है। अब उस सुख के का कोई पूर्वग्रह इसमें है इसलिए सुख लगा, पूर्वग्रह में अभिप्राय था कि ये सुख का कारण है, ये अच्छी चीज है इसलिए सुख लगा, या वैसे ही सुख लग गया? अभिप्राय पूर्वक लगता है, उसमें विश्वास कर लिया है कि ये मेरे लिए सुख का कारण है, फिर सुख लग, फिर उस पदार्थ के उदय प्रसंग में जीव को तीव्र राग रस का परिणमन हो ही जाता है और वही जीव का बंधन है। तीव्र राग रस से द्वेष रस से मोह रस से परिणमन होना यही जीव का बंधवृत्ति वाला नुकसान वाला ये रोगिष्ट परिणमन है। तो पहले तो अभिप्राय को तोड़ना, अभिप्राय को मिटाना, और अभिप्राय मिटाने की जो विधि है वेदना आदि लक्ष्य बांधना आदि वो सब आना चाहिए, उसका साइंस है बिल्कुल। कई बार पूर्व काल में वृत्तियों के उपशमन तथा निवर्तन का जीव ने अभिमान किया है त्याग करके, परंतु वैसा कोई साधन नहीं किया, वास्तव में ऐसा कोई साधन किया ही नहीं है। और अभी तक जीव उस प्रकार का कोई उपाय नहीं करता, उस प्रकार का मैंने सच्चे प्रकार का सही उपाय नहीं करता, अर्थात अभी उसे उस अभ्यास में कोई रस दिखाई नहीं देता, श्रुति प्रैक्टिस में रस दिखाई नहीं देता, तथा कटुता लगने पर, गुजराती शब्द बोलो, कड़वो लागे, कड़वास, कटुता मैंने कड़वास लगने पर भी मैंने सच्ची प्रैक्टिस करने में तो तकलीफ होगी, उस कटुता की अवगुणना कर भले ही कठिन लगे, यह जीव उपशमन एवं निवर्तन में प्रवेश नहीं करता। तो भूतकाल में किया नहीं और वर्तमान में करता नहीं है। मैंने सही रास्ते पे आने थोड़ा कठिन तो लगेगा, यानी सुहाएगा नहीं, कड़वा लगेगा, कटुता लगेगी, फिर भी उसकी अवगणना करके आगे चलना चाहिए। कितना भी कठिन लगे तो भी बहुत लाभ का कारण है ऐसा समझ करके उत्साह से निज हित के कार्य में प्रवेश करना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन लगे। कठिन कैसे लगेगा कि जहां जहां इस जीव को मिठास आई है वहां मिठास छोड़ना वो कटुता है, अच्छा नहीं लगेगा। और वही दृष्टांत लेंगे, बात वही करेंगे कि बहुभाग जीव को अपने परिवार के प्रति स्नेह मोह ज्यादा होता है। गृहस्थी में क्या होता है कि जिस प्रकार से पुत्रादि संपत्ति में इस जीव को मोह होता है, वहां मिठास लगती है, बहुत प्यार से प्रेम से अपने कुटुंबियों के साथ रहता है मनुष्य, और इसके कारण अनेक प्रकार के ऐसा बंध वृत्तियों का परिणमन करता है कि जीव प्राय अधोगति में चला जाता है, यही कारण से अधोगति में जाता है। उसको लगता है कि हमने ज्यादा पाप तो करते नहीं, सब जैसे गृहस्थी निभाते हैं वैसे हम भी गृहस्थी निभा रहे हैं, इसमें कौन सा हमने बड़ा अपराध किया, ऐसा सामान्य लगता है। वास्तव में वो बात जो मोह है, अपनापन है, ये सबसे बड़ा अपराध है। जीव कोई पाप का परिणाम करता है तो मालूम पड़ता है कि ये बड़ा अपराध किया, भले कुटुंब के खातिर करता हो, लेकिन कोई बड़ा पाप का परिणाम करता है, कोई इंडस्ट्री लगा करके हिंसा ज्यादा करता है, तो कोई व्यापार में अनिति करके, व्यवहार में अनिति करके पाप करता है, कोई भी किसी भी प्रकार से पाप के परिणाम होते हैं तो जीव को मालूम पड़ता है कि ये ठीक नहीं है, नहीं होवे तो अच्छा है। लेकिन जो परिवार है उसमें अपनापन करता है कि ये मेरे फलाने सगे हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता है, ये मेरे फलाने हैं, मेरे फलाने हैं, उसमें उनको कोई बड़ा अपराध नहीं लगता। हाँ, उसको धर्म फर्ज कर्तव्य ऐसा समझता है कि हम हमारे लड़के का, हमारे बेटियों का, हमारे उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका रखेंगे, उसका बराबर ख्याल करना चाहिए हमको, वरना उसका भविष्य बिगड़ जाएगा, उसका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको वो अपराधी नहीं लगता है, उसको तो वो धर्म समझते हैं, फर्ज समझते हैं। कहते कि सबसे बड़ा अपराध वो है और यही अपनापन है, वही सब कुछ कराएगा, वो अपनापन के कारण से सब कुछ करेगा, चारित्र मोह का पाप भी उसके कारण से ही करेगा, अगर अपनापन नहीं है तो क्यों करेगा। तो ये जो अपनापन है यही सबसे बड़ा अपराध है, उसका रूट कॉज मूल कारण यही है। जीव को अनेक प्रकार के बड़े बड़े पाप करने का मूल कारण क्या है कि परिवार में अपनापन कर रखा है, वही है। तो ज्ञानी दूसरे पाप मिटाने की बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे कि तुम पहले इसका मोह मिटाओ, जिसको हम कुटुंब प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटुंब का प्रतिबंध, उसको राजी रखने के लिए हमको सब कुछ करना है,
माता पिता के लिए विनय करना।
अलग अलग बात है, वो अलग अलग बात है, वो तो उपकार बुद्धि से भी नहीं करते हैं, लेकिन अपनत्व करने का फरमान नहीं है। और ये जो माता पिता है वो व्यवहारिक तौर से है, परमार्थ से कोई माँ बाप है नहीं, न पिता पुत्र है, न कोई माँ बाप है, न कोई भाई बहन है, न कोई पति पत्नी है, कोई कुछ कह किसी का कुछ है ही नहीं, और यही वास्तविकता है। तो ये प्रकरण चल रहा है परमार्थ का, व्यवहार का नहीं चल रहा है, परमार्थ का प्रकरण चल रहा है, वो बात है।
इस अपनत्व परिणाम का फल क्या है? इस अपनत्व परिणाम का फल क्या है?
इस अपनत्व परिणाम का फल अधोगति में जाकर के आखिर में निगोद में चला जाना, वो है। सीधा नहीं जाएगा तो परंपरा गए तो जाएगा जाएगा और जाएगा, क्योंकि त्रस्त का काल ही मर्यादित है, अल्पकाल में तो त्रस्त पर्याय पूरी हो जाती है, बात होगी।
परिणाम से भयंकर परिणाम,
हाँ बहुत भयंकर परिणाम। वो अपना तो बहुत सामान्य लगता है लेकिन बहुत भयंकर है, ऐसा समझ लें। सबसे बड़ा विपर्यास है ये अपनत्व जो किया, वो आत्म स्वरूप में अपनत्व करने नहीं देगा, चाहे जितना शास्त्र पढ़ ले, चाहे जितनी क्रिया कर ले, अंदर में से अपनत्व छोड़े बिना, पर में अपनत्व छोड़े बिना आत्मा में अपनत्व हो सकता नहीं कभी। दो जगह तो अपनत्व होना होगा नहीं, विरुद्ध पदार्थ है, स्व में भी हो और पर में भी हो, वो तो हो ही नहीं सकता। देखो अभी वही कहते हैं कि जिस प्रकार से पुत्रादि संपत्ति में इस जीव को मोह होता है, पुत्र हो पुत्री हो, दूसरे संयोग हो, पैसे कपड़े मकान आबरू खेती, वह प्रकार सर्वथा निरस और निंदनीय है, निंदा के योग्य है।
सर्वथा वर्ड लगाया गया, सर्वथा वर्ड लगाया गया,
हाँ सर्वथा निरस और निंदनीय है। इसमें क्या रस लेना जैसा है, ऐसा कहते हैं। फालतू का अपनत्व करता है जीव, उसका है ही नहीं जीव, दूसरा जीव इसका कुछ है ही नहीं, वो केवल निरस है और सर्वथा निंदनीय, निंदा के योग्य है। यह बात इस दुष्ट परिणामी जीव के लिए बारंबार विचारणीय है, अभी तक उसने सही उपाय नहीं किया। यह बात देखो, अपनी निंदा करते हैं, ये दुष्ट परिणामी जीव है, उसको बारंबार विचार करने दीजिए, बहुत अपना घातक परिणाम करता है दुष्ट। इसलिए क्या कि दुष्ट है वो मारता है, ये अपना परिणाम है, वो अपने को मारता है, वो दुष्ट परिणाम ही है अपने, वो किसी प्रकार से विसर्जन को विसर्जन बिना विस्मरण करने योग्य नहीं है कि हमने कभी सच्चा उपाय किया ही नहीं अभी तक। जिस प्रकार से पुत्रादि संपत्ति में इस जीव को मोह होता है, वह प्रकार सर्वथा निरस और निंदनीय है। जीव यदि जरा भी विचार करे, थोड़ा भी विचार करे वास्तविक रूप से, तो यह बात स्पष्ट समझ में आने जैसी है कि इस जीव ने किसी में पुत्रत्व की भावना करके अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रखे। और बात समझ में आए ऐसी है कि हम कैसे कैसे परिणाम करते हैं, हमारे पुत्र आदि के लिए हम कैसे कैसे परिणाम करते हैं। जहां जहां भी हमने अपनापन किया, चाहे पुत्र हो, चाहे भाई हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, कहीं भी हो, हमारे परिणाम बिगाड़ने में हमने कोई कसर नहीं रखे। मनो एलिटरेशन छे, माठू करवामां मणा राखी, मणा एटले खामी, माठू एटले खराब अहित। और किसी को पिता मानकर भी वैसा ही किया है, पुत्र मानकर भी वैसा ही किया है, और पिता मानकर भी वैसा ही किया है, पति को राजी रखने में ऐसा किया है, पत्नी को राजी रखने में ऐसा किया है, बस परिणाम में अपना बहुत बहुत अहित किया है। और कोई जीव अभी तक तो पिता पुत्र हो सका हो ऐसा देखने में नहीं आया। कोई जीव कोई का पिता हो और कोई जीव किसी का पुत्र हो ऐसा कभी बन सकता, सब स्वतंत्र जीव है। परिवार के हो या समाज के हो या विश्व के कोई भी जीव हो, सब जीव अनादि से स्वतंत्र है, अनादि अनंत अपना स्वरूप में भिन्न रूप से रहने वाला है, कोई किसी का कुछ है
नहीं।
सब कहते आए हैं व्यवहार में, सब बोलते हैं कि इसका यह पुत्र अथवा यह इसका पिता, ऐसा बोलते हैं, परंतु विचार करते हुए स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह बात किसी भी काल में संभव नहीं है। बोलने में आता है और मोह से पिता पुत्र आदि का घनिष्ठ परिणाम भी होता है कि ये मेरे हैं, लेकिन कभी कोई किसी का हुआ नहीं, वह हो भी सकता नहीं है। परंतु विचार करते हुए यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह बात मैंने कोई पिता पुत्र हुए ऐसी बात किसी भी काल में संभव नहीं है, ये बन ही नहीं सकता। कैसे? कि अनुत्पन्न ऐसे इस जीव को, अनुत्पन्न तो अनादि से है, कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ है, अनुत्पन्न ऐसे जीव को पुत्र रूप से मानना अथवा ऐसा मनवाने की इच्छा रहना, मैं उसको पुत्र रूप में मानूं और वो मुझे पिता के रूप में माने, मनवाने की इच्छा रखना, यह सब जीव की मूढ़ता है। क्या है? इस जीव की मूढ़ता है। मूढ़ता मैंने क्या कि इसकी बुद्धि खत्म हो गई है। मूढ़ होता है तो क्या होता है कि इसकी बुद्धि है वो खत्म हो गई है, विचार शक्ति नहीं रही। किसी को पुत्र रूप में मानना और अपना पुत्र उनको पिता रूप में माने ऐसी इच्छा रखना जीव की सरासर मूर्खता है, और कुछ नहीं है। और यह मूर्खता किसी भी प्रकार से सत्संग की इच्छा वाले जीव को करना योग्य
नहीं है।
ये बहुत मार्मिक बात किया है कि जगत के लोग तो ये ऐसे मूढ़ता में पड़े हैं, जगत के लोग तो ऐसे मूढ़ता में पड़े ही हैं, ऐसा ही नहीं है, सुनते नहीं, समझते नहीं, वो तो ऐसे मूढ़ है ही, वो तो मूर्ता करते ही पिता पुत्र आदि मान करके परिणाम बिगाड़ते हैं और अधोगति में चले जाते हैं, क्योंकि निगोद का पेट बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि अनंत 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 उसमें जाए सबको समा लेता है। लेकिन जिसको सत्संग की इच्छा हो, सत्संग की इच्छा हो माने क्या कि आत्मकल्याण की जिसको इच्छा हो उसको सत्संग की इच्छा किया है। जिसको आत्मकल्याण की इच्छा हो पर उस कारण से जो सत्संग में आता हो उसको ऐसा पिता पुत्र आदि का लगाव रखना ये बिल्कुल योग्य नहीं है।
अभ्यास का बात दिया
है, हाँ ये अभ्यास करो, छोड़ो इस बात को कि मेरे पुत्र है, ये मेरे फलाने हैं, ये मेरे कुटुंब वाले हैं, इसका मैं जिम्मेदार हूँ, इसका मुझे करना चाहिए, और करने के लिए कैसा भी परिणाम को बिगाड़ करके कैसा भी काम कर लेता है, ये सब गड़बड़ है, ये मुमुक्षु को होना चाहिए, ये योग्य नहीं है। दूसरे के बाद दूसरे जाने, मुमुक्षु को तो बिल्कुल योग्य है ही नहीं। तो खास करके ये बात मुमुक्षु के लिए कही है, ये बात किसके लिए कही है, मुमुक्षु के, सत्संग की इच्छा करने वाले को, क्या कि ये क्या कर रहे हो आप, मुमुक्षु भी हो और परिवार में ममत्व भी करते हो, क्या बात है, और लोग तो मुंड है, आप भी इधर आकर के मुंडता को रखते हो, ये बात कैसी है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, इस मुंडता को छोड़ देना चाहिए। हाँ कुटुंब के प्रति निस्नेह होना, स्नेह छोड़ देना, हाँ ये शिखामण कैसी है, गांधी शिखामण लागे, वहां कई बात है, तो पीछे क्या कौन यार स्नेह राखो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने आत्मा के गुण निदान के प्रति स्नेह करो ना, और अगर बाहर जाना है तो सत्पुरुष के प्रति करो, सदगुरु के प्रति करो, कौन ना देता है, लेकिन कुटुंब के प्रति साधर्मी के प्रति करो, सत्पुरुष सदगुरु साधर्मी उनसे करो, लेकिन कुटुंब के प्रति तो स्नेह करने योग्य है ही नहीं। जवाबदारी का क्या है, कि ये मैं फलाना हूं ऐसा मान करके जवाबदारी करने का है, बाकी व्यवहारिक तौर से जो भी है वो कर लो, लेकिन ममत्व छोड़ करके, ममत्व रख करके नहीं, कुछ भी करना हो तो भी ये शर्त है कि ममत्व और संबंध रख करके नहीं, उसको छोड़ करके करना है, जो भी करना है। आपने जो मुहादि प्रकार के विषय में लिखा है, उन्होंने वो सरल परिणामी जीव थे त्रिभुवन भाई भी, कि हमको तो ऐसा हमारे पुत्र के प्रति ऐसा भाव रहता है, ये हमारा जो मोह है इसके लिए हम क्या करें, हमको ये मोह छोड़ना है, रखना नहीं है, तो गुरु के प्रति निवेदन करते हैं कि आपने जो मुहादि प्रकार के विषय में लिखा कि मेरा ऐसा मोह है, वह दोनों के लिए भ्रमणा का हेतु है, माता और पिता कोई भी हो दोनों के लिए ये भ्रमणा का हेतु है। ऐसा नहीं है कि माँ को करना चाहिए और बाप को नहीं करना चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि बाप को है माँ को नहीं करना चाहिए, दोनों को भ्रमणा का हेतु है। हाँ भ्रमण का हेतु है, भ्रमणा का नहीं, भ्रमण का मैंने परिभ्रमण का हेतु है, ये जो मोह है वो परिभ्रमण का हेतु है। अगर लंबा परिभ्रमण करना हो तो ऐसा मोह करना, बहुत दुखी होना हो तो ऐसा मोह करना, अत्यंत विटंबना का हेतु है भ्रमण का, परिभ्रमण का हेतु है और बहुत दुखी होने का कारण है, ये समझ लेना, बहुत दुखी हो जाएगा तुम, और ये दुख छुड़ाने के लिए कोई पुत्र पिता आदि आने वाले
नहीं है,
उस सब अपने अपने कर्म भोगने के लिए चले जाएंगे और तू मर जाएगा। देखो क्या कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे, ज्ञानी हो और पुत्रादि में मोह करे, तो ज्ञान को ठोकर मारने जैसा है, उसका ज्ञान चला जाएगा। ज्ञानी भी ये भूल करे तो उसका ज्ञान चला जाएगा। बात तो कानून तो सबके लिए एक सा होता है, ज्ञानी के अलग कानून है, अज्ञानी के लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं है। ज्ञानी पुरुष भी इस तरह आचरण करे तो ज्ञान को ठोकर मारने जैसा है और सब प्रकार से अज्ञान निंद्रा का वह हेतु है। सभी अपेक्षा से वो अज्ञान का कारण है, कोई अपेक्षा ऐसी नहीं है कि ज्ञान नहीं हुए। हाँ, ज्ञानी को मोह होता नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञानी को मोह हो गए तो उसका ज्ञानी ज्ञानीपना चला जाए, ऐसा कहते हैं। ऐसा नहीं कि उनके लिए छूट है, ऐसा नहीं चलता। इस प्रकार के विचार से दोनों को सीधा भाव कर्तव्य है, ये बात विचार करके सरल परिणाम से पुत्रादि के प्रति मोह छोड़ देना, मोह नहीं करना। यह बात अल्पकाल में ध्यान लेने योग्य है, मैंने तत्काल ध्यान लेने योग्य है, बाद में करेंगे वो बात नहीं है। चेतवा योग्य एम लिखो थे, अच्छा गुजरात में चेतवा योग्य लिखो, तो फिर हिंदी में तो बराबर नहीं है। यह बात अल्पकाल में सावधानी करने योग्य है, चेतना मैंने वहां सावधानी की बात है कि अभी सावधान हो जाओ, अभी जागृत हो जाओ, अल्पकाल में उसको जागृति में ले लो, इसमें देर मत करो। आप और आपके सत्संगी यथासंभव निवृत्ति का अवकाश लें, यही जीव को हितकारी है। क्या है, आप और आपके सत्संग में जो लोग आते हैं, वो हम बात के कुछ और भी मुमुक्षु थे, तो निवृत्ति का अवकाश लें। संसार की प्रवृत्ति जो कुटुंब के कारण से कर रहे हो, इसमें से थोड़ा निवृत्ति आत्महित के लिए, आत्मकल्याण के लिए लेना, और यही जीव को हितकारी है। प्रवृत्ति में फंसे रहना और कर्म बंधन करके अधोगति में चले जाना, वो आत्मा को हितकारी निवृत्ति में आ जाना, हो सके तो निवृत्ति में आ जाना। ये ज्ञानी की आज्ञा है। क्या है, ज्ञानी की आज्ञा है, वो आज्ञा को तत्काल अमलीकरण करना चाहिए, ये बात है।
देव मंदिर भगवान जय हो परम कृपा श्री कान गुरुदेव।